डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक को देखें। मेरा मतलब है, पिछले हफ्ते ही हमने कई शानदार ट्रेड किए, जैसे एक ट्रेड ने लगभग 100% का मुनाफा कमाया। हमारे यहाँ कई ट्रेडर हैं। हमारे पास एक ट्रैकर भी है जो सभी राजनेताओं के ट्रेड को ट्रैक करता है, जैसे नैन्सी पेलोसी ट्रेड, स्टॉक मार्केट डेटा और बहुत कुछ। यह $10 प्रति माह है, लेकिन 7 दिन का फ्री ट्रायल है। हमें देखें, लिंक नीचे दिया गया है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरे मकान मालिक अभी मेरे घर आए हैं। मेरा ट्रेलर, मेरा 3 बेडरूम 2 बाथरूम वाला ट्रेलर जिसमें मैं लगभग 2 साल से रह रहा हूँ, उसने मुझे और मेरे 6 बच्चों के लिए जगह खोजने के लिए 48 घंटे से भी कम समय दिया है। लेकिन एक खास बात मुझे समझ में आती है। सेक्शन 8 में शामिल सभी लोगों को, वह आप सभी को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 2 साल दे रहा है। हाउसिंग डिपार्टमेंट और CDC, वे हजारों लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि हाउसिंग डिपार्टमेंट में करीब 3,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। CDC में करीब 1,000 कर्मचारी हैं। तो अभी हम सरकार के बंद होने की वजह से सबसे बड़ी छंटनी होते हुए देखने जा रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ही पागलपन भरी होती जा रही हैं, और मुझे नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है। लेकिन अभी सरकार के बंद होने की वजह से संघीय नौकरी बाजार पूरी तरह से तबाह और तबाह हो गया है। मेरा मतलब है, 150,000 से ज्यादा संघीय कर्मचारी बायआउट ले रहे हैं, जो मूल रूप से एक तरह का सिवरेंस पे है, और वे बाहर हो गए हैं। और अभी हम सेक्शन 8 में अब तक की सबसे बड़ी कटौतियां होते हुए देखने जा रहे हैं। इस व्यक्ति का कहना है कि कुछ बाजारों में यह एक नाटकीय बदलाव होने जा रहा है। एरिजोना के एक शहर में, जो कि सेक्शन 8 का बहुत बड़ा बाजार है, हाल ही में सेक्शन 8 के तहत किराए में कटौती की गई और पूरा बाजार ध्वस्त हो गया। मेरा मतलब है, रेंटफोर्ड स्टूडियो का किराया 1,000 से घटकर 600 हो गया, और यह बहुत बड़ी बात है। और अभी बहुत से ऐसे एक्स यूजर हैं जो बस यही कह रहे हैं कि अगर आप सेक्शन 8 में हैं तो आपके लिए काम न करने का कोई कारण नहीं है, जबकि बच्चे स्कूल में हैं। अब वयस्क होने का समय आ गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपेक्षाकृत युवा हैं और वे स्वस्थ हैं, लेकिन वे काम नहीं करना चाहते। वे बस फूड स्टैम्प पाना चाहते हैं, वे बस मुफ्त में घर पाना चाहते हैं, और ठीक यही हो रहा है। आपको यह जानना होगा कि US फूड स्टैम्प और हाउसिंग और सेक्शन 8, US मूल रूप से इन्हें कैंडी की तरह देता है। अगर आप दुनिया के किसी भी अन्य देश में जाते हैं, खासकर एशिया में या मध्य पूर्व में, अगर आप सेक्शन 8 के तहत फूड स्टैम्प पाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे मानदंड पूरे करने होंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह US में मौजूद स्टैम्प जितना अच्छा नहीं है। अभी सेक्शन 8 का भारी असर पड़ रहा है, और इसकी वजह से किराए वास्तव में कम हो रहे हैं। और अगर आप मौजूदा प्रशासन को देखें, तो वे सेक्शन 8 में कटौती करना चाहते हैं। इनमें से कुछ वीडियो देखें। और बूम, बस ऐसे ही ट्रंप ने आप सभी को नहीं काटा। धारा 8, फिर आपके लिए केक और आइसक्रीम काटो। मुझे हमेशा से पता था कि धारा 8 मजबूत लोगों के लिए नहीं है, और मैं इसे ऐसे ही कहूंगा, धारा 8 मजबूत लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जो लोग शिक्षित हैं और काम करने के लिए उठ सकते हैं, उठो और इसे करो। मुझे बहुत पहले पता था जब मैंने इसे आजमाया था, यह मेरे लिए नहीं था, क्योंकि वे आपको बताते हैं कि आप कितने सहज हो सकते हैं, आप कितने सहज हो सकते हैं। मैं कार्यक्रम के साथ नहीं हूं, आप मुझे बताने जा रहे हैं कि मैं कितना सहज हो सकता हूं। ठीक है, ये केवल पत्र को ऊपर उठाने के लिए है, इसलिए जब मैंने पत्र को नीचे गिराया, तो मैंने इसका उपयोग पत्र को वापस उठाने के लिए किया। और बेबी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मैं सरकार पर पलटकर नहीं देखूंगा, और वे मुझे नहीं बताएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है, और यह कैसे निर्धारित करना है कि मैं कितना सहज होने जा रहा हूं। यह बकवास है। मैं बहुत धन्य हूं, मुझे नौकरी मिल गई घर से काम करने की। मैं इसके लिए भगवान का शुक्रगुजार हूं। मेरे पास एक मजबूत हिस्पैनिक पति है, जिसके लिए मुझे काम करने के लिए भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि भाई साहब नहीं जा रहे थे। अगर उनकी चलती तो मैं काम नहीं करती, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम घर पर रहो, बच्चों का ख्याल रखो। मैं ये सब कर रही हूँ और वो सब कर रही हूँ, तुम नहीं, मैं कहती हूँ, लेकिन बेबी प्लीज मुझे तुम सबका भविष्य संभालने दो। संक्षेप में, मैं धन्य हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम सबको उठ खड़े होने की जरूरत है। इस आदमी को अपना भविष्य तय मत करने दो, क्योंकि वो नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। मुझे वाकई उन लोगों के लिए बुरा लगता है जो काम करने में असमर्थ हैं। मैं तुम सबके लिए प्रार्थना करूंगी। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, नहीं हंसने की बात है, नहीं ऐसी कोई बात है जिसके बारे में लोग यहाँ वहाँ शोर मचाएं। अरे, उसने तुम्हारा सेक्शन 8 ले लिया, ये मजाक नहीं है यारों, ऐसा नहीं है। अभी
पुष्टि हुई है कि वे धारा 8 को हटा रहे हैं, इस बार यह आधिकारिक है। जो लोग मुझ पर यकीन नहीं करते, मैं चाहता हूँ कि आप सब खुद जाकर इसकी जांच करें। धारा 8 खत्म हो चुकी है, तो आप सब लोग सरकार से अपने बिलों के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, सरकार से अपने बिजली बिलों के लिए छोटे छोटे चेक भेजने का इंतजार कर रहे हैं। ये खत्म हो चुका है, मकान मालिक बहुत नाराज होने वाले हैं, यहाँ तक कि धारा में शामिल कुछ लोग उस मकान मालिक को $200 से $300 भी नहीं दे पा रहे हैं, ताकि वह $300 से $400 चुका सकें। आप इतने पैसे भी नहीं दे सकते। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपको लगता है कि पहले जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन अब जिंदगी और भी बदतर होने वाली है। और मुझे ये कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे आलसी लोग हैं जो हर महीने सरकारी चेक का इंतजार कर रहे हैं। ये खत्म हो चुका है। अगर आप बूढ़े नहीं हैं, अगर आप विकलांग नहीं हैं, तो आपको सरकार से आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। आप योग्य नहीं होंगे, आप योग्य नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि आप सभी सेक्शन 8 के लिए आवेदन भर रहे थे और सभी को अस्वीकार कर दिया गया। किसी को भी इसके लिए स्वीकृति नहीं मिली। आइए वास्तविकता पर आते हैं, इसके बारे में सोचें। हाल ही में सेक्शन के लिए किसी को भी स्वीकृति नहीं मिली है। अपना होमवर्क करें।
30 से 90 दिनों में आप में से कुछ लोग अंदर तक हिल जाएंगे और वास्तविकता में वापस आ जाएंगे। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि आप हर किसी की तरह किराया देने वाले हैं। यदि आप सेक्शन 8 के आजीवन प्राप्तकर्ता हैं, तो आप अंदर तक हिल जाएंगे। क्या हो रहा है? ट्रंप प्रशासन आप में से हर एक पर नकेल कस रहा है जो इस कार्यक्रम के आजीवन प्राप्तकर्ता हैं। अब नए निर्देश हैं जो न केवल प्राप्तकर्ताओं को सेक्शन 8 प्राप्त करने के तरीके के बारे में दिशा निर्देश भेजते हैं। वे आपको बताते हैं कि आप कागज पर कलम रखना शुरू करने वाले हैं और आवेदन जमा करने वाले हैं, क्योंकि 30 से 90 दिनों में आपके पास कोई सेक्शन 8 नहीं होगा और आप हर किसी की तरह अपना किराया चुकाएंगे। तो नए निर्देश भी हैं कि पब्लिक हाउसिंग अथॉरिटी को 30 दिनों के अंदर अपने किराएदारों का पूरा लेखा जोखा देना होगा, जिसमें नागरिकता का प्रमाण भी शामिल है। हाँ, इसका मतलब है कि सेक्शन 8 में कोई अवैध विदेशी नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि यह सबसे अच्छी खबर है। मैं उन सभी लोगों के साथ हूं जिन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन ये कार्यक्रम अस्थाई है। अस्थाई तो अब इनकी अवधि अधिकतम 2 साल है। और अगर आप आजीवन लाभार्थी हैं और सालों से सेक्शन 8 प्राप्त कर रहे हैं और इसे अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सेक्शन 8 के लिए अब 2 साल की सीमा है। अगर आप 2 साल में अपना काम नहीं करवा पाते हैं, तो आपको बड़ा होना होगा और इसका पता लगाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बर्कले से रेंटल हाउसहोल्ड के साथ हूं। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं या नहीं, या आपने देखा है या नहीं, लेकिन ट्रंप सेक्शन 8 को अब 2 साल का कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं और वह हर किसी को 30 से 60 दिन, 30 से 90 दिन या 30 से 60 दिन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मूल रूप से GTFO में 30 से 90 मिनट लगते हैं। तो तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, सुनिए दोस्तों, मेरे पास एक बड़ी अपडेट है। ठीक है, आजीवन सेक्शन 8 हाउसिंग प्राप्तकर्ताओं को हटाने की प्रक्रिया का मसौदा तैयार किया गया है। तो इसमें यही लिखा है, तो लोगों को 2 साल से ज्यादा समय तक सेक्शन 8 नहीं लेने दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 2 साल में आपको अपनी सारी चीजें ठीक कर लेनी चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है, जब तक कि आप विकलांग न हो। अक्टूबर 2025 में उन्हें 2026 का बजट बनाना है, तो बस कुछ ही महीने बाद ये नियम राज्यों को भेजे जाएंगे। इसके बाद राज्य उन किराएदारों को सूचित करेंगे जो 2 साल से ज्यादा समय से सेक्शन 8 में हैं। क्योंकि आप अभी भी सेक्शन 8 में क्यों हैं, माँ? ठीक है, वे आपको सूचित करेंगे और आपको 60 से 90 दिन देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए यह कार्यक्रम 60 से 90 दिनों में समाप्त हो जाएगा। 60 या 90 दिन का नोटिस उस राज्य पर निर्भर करेगा जिसमें आप रहते हैं। पब्लिक हाउसिंग अथॉरिटी के प्रतिनिधि उन लोगों से संपर्क करेंगे जो वर्तमान में सेक्शन 8 में हैं, सबसे पहले उन लोगों से जो इस कार्यक्रम में सबसे लंबे समय से हैं। ठीक है, सेक्शन 8 अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जीवन शैली नहीं होगी। चलो चलो, ये कहलाता है अपनी गाड़ी चलाओ और काम पर जाओ। मुझे माफ करें, या ये सिर्फ एक विचार है। ऐसे बच्चे पैदा करना बंद करो जिनका पालन पोषण तुम नहीं कर सकते, और किसी और सरकार से अपने बच्चों की देखभाल करने की उम्मीद मत करो। ठीक है, जब तुम 30 इंच के बस्ट डाउन करवाते हो और अपने नाखून और पैर की उंगलियों का इलाज करवाते हो और मियामी जाते हो, तो तुम्हें BBL मिलते हैं, बेबी। ओह, नौकरी पाओ। ठीक है, मैं खुश हूँ। अगर तुम खुश नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम बहुत देर तक आलसी बने रहे हो। उठो और नौकरी पाओ। ठीक है, भर्ती कार्यालय खुला है, बेबी, जाओ और उन्हें अच्छे लाभ दिलाओ। ठीक है, ये तो बस एक सुझाव है। अगर आपको नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें, तो मिलिट्री से शुरुआत करें। ठीक है, भर्ती कार्यालय जाएं। ठीक है, अगर आप जीवन भर के लिए कुछ लाभ चाहते हैं, तो कम से कम आपको वे लाभ तो मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का दिन शुभ हो।
आज ही सरकार बंद हो गई। यह एक ऐसी चीज है जो वित्तीय वर्ष के अंत में होती है, अगर इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पाती कि सरकार अपने फंडिंग का क्या करने जा रही है। और अभी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच असहमति है। इसलिए बहुत से लोग पूछ रहे हैं, अब जबकि सरकार बंद हो गई है, तो सेक्शन 8 फंडिंग के लिए इसका क्या मतलब है? सरकारी शटडाउन के बारे में अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों होती हैं। बुरी खबर यह है कि अगर आप सरकारी फंडिंग के किसी गैर जरूरी हिस्से के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि म्यूजियम या नेशनल पार्क के लिए कुछ, तो हो सकता है कि सरकार के वापस आने तक आपको बिना वेतन दिए अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सैन्य सहायता या सामाजिक सुरक्षा या आपने अनुमान लगाया धारा 8 जैसे आवश्यक कार्यक्रमों को धन मिलना जारी रहेगा। इसलिए मेरे और धारा 8 के मकान मालिकों के लिए आपको अमेरिकी सरकार से हर महीने की पहली तारीख को अपना किराया मिलता रहेगा, भले ही सरकार बंद हो। इसका मतलब है कि आज 1 अक्टूबर को मैं अपने पेंटहाउस के भुगतान के लिए अमेरिकी सरकार से $150,000 से अधिक एकत्र करूंगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि अगले 45 दिनों में $10,000 से कम में अपनी पहली सेक्शन 8 रेंटल प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, तो इस गुरुवार यानी कल मैं शुरू से अंत तक ये कैसे करना है इस पर पूरी तरह से मुफ्त लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसमें नामांकन करना सुनिश्चित करें क्योंकि स्थान सीमित है। लिंक बायो में है। बेबी, आप सभी देखते हैं कि वे सेक्शन ए प्रोग्राम के साथ क्या कर रहे हैं। यह पागलपन है कि वे सब कुछ कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप 20, 30, 40 सालों से सेक्शन ए में हैं, तो वे आपसे कह रहे हैं कि आपको अगले 60 दिनों के अंदर वहां से बाहर आ जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे ये कैसे कर रहे हैं, लेकिन वे आपको बता रहे हैं कि यह अब नहीं है। लेकिन अगर आपने हाल ही में इसे खरीदा है तो वे आपको 2 साल का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। लेकिन सेक्शन 8 प्रोग्राम में कटौती की जा रही है, आपको इससे बाहर निकलना होगा। बाहर निकलिए। और यह पूरी दुनिया में पागलपन की हद तक फैला हुआ है। और साथ ही वे लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें सेक्शन 8 से बाहर निकलना होगा और वे लंबे समय से सेक्शन 8 में हैं। खासकर जब आप इतने लंबे समय से इस पर हैं और जब आप इसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है, आपको जाना ही होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा कानून भी बनाया है जिसके तहत बेघर होना गैरकानूनी है, तो आप सेक्शन 8 में नहीं हो सकते। बेघर होना गैरकानूनी है, तो वे बेघर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वे सड़क पर अपने घर, टेंट और अन्य सामान को घसीटते हुए नहीं ले जा सकते, उन्हें कूड़ेदान में नहीं डाल सकते, क्योंकि अब वे कह रहे हैं कि बेघर होना गैरकानूनी है। लेकिन फिर भी वे आपको एक ऐसे कार्यक्रम से दूर रख रहे हैं जो आपकी सहायता करता है, क्योंकि धारा 8 मुफ्त नहीं है। आपको उस बिल का कुछ भुगतान करना होगा। वे आपको पूरी चीज नहीं देते। कुछ लोगों को 100% मिल सकता है, लेकिन शायद ऐसा बहुत कम होता है। धारा 8 मुफ्त है। वे आपको एक ऐसे कार्यक्रम से दूर रख रहे हैं जो आपको अपना किराया चुकाने में मदद करेगा, और अब वे आपको बता रहे हैं कि बेघर होना गैरकानूनी है, इसलिए हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। वे नर्सिंग होम में उन लोगों के साथ भी गड़बड़ कर रहे हैं। वे मेडिकेड में कटौती के कारण विंग बंद कर रहे हैं, यह खत्म हो गया है, और इसलिए वे मूल रूप से आपको नर्सिंग होम में अपने लोगों की जांच करने के लिए कह रहे हैं। यह वास्तविक समय में हो रहा है, यह वास्तविक समय में हो रहा है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आप उस कार्यक्रम में हैं, तो खुद को संभालिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको अभी तक अपना पत्र न मिला हो, लेकिन आप जानते हैं कि आप कौन हैं। खुद को संभालिए, अपने परिवार को साथ लीजिए, जो करना है वो कीजिए, देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। एक कमरा किराए पर दे दीजिए, एक सेक्शन किराए पर दे दीजिए या ऐसा ही कुछ, लेकिन आप सब खुश रहें। सेक्शन 8 के 2 साल के टाइम लिमिट प्रपोजल पर ताज़ा अपडेट ये है और सरकार इस पर कैसे असर डाल रही है, जो वाकई में अपने पैर खींच रही है। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है? कांग्रेस ने अभी तक FY 2026 का बजट पास नहीं किया है और सरकार अभी भी 30 सितंबर की आधी रात को बंद होने की राह पर है, जब तक कि डील नहीं हो जाती। ट्रंप प्रशासन के FY 2026 के बजट प्रपोजल में सेक्शन 8 और दूसरे फेडरल हाउसिंग प्रोग्राम पर 2 साल की टाइम लिमिट शामिल है, जिसमें सक्षम वयस्कों, बुजुर्गों और विकलांग किराएदारों को छूट दी जाएगी। यह प्रस्ताव अभी तक कानून नहीं बना है। यह बजट बिल का हिस्सा है जिसे अभी कांग्रेस द्वारा पारित किया जाना बाकी है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अधिकांश वयस्कों के लिए धारा 8 सहायता को 2 साल तक सीमित कर दिया जाएगा। संघीय वाउचर को राज्य ब्लॉक अनुदानों से बदल दिया जाएगा, जिससे राज्यों को किराया सहायक कार्यक्रमों पर नियंत्रण मिल जाएगा। मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूं। संघीय वाउचर को राज्य ब्लॉक अनुदानों से बदल दिया जाएगा, जिससे राज्यों को किराया सहायक कार्यक्रमों पर नियंत्रण मिल जाएगा। काम की आवश्यकताएं लागू की जाएंगी, जो कि हम जानते हैं कि 62 वर्ष से कम उम्र के स्वस्थ वयस्कों के लिए सप्ताह में 20 घंटे से अधिक है। सभी सार्वजनिक आवास प्राधिकरणों से नागरिकता सत्यापन की मांग की जाए, जो कि हम जानते हैं कि अभी हो रहा है, जो कि समाप्त होने जा रहा है। और सरकार के बंद होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कांग्रेस बजट पारित नहीं करती है या कोई प्रस्ताव जारी नहीं रखती है, तो HUD एक कंकाल कर्मचारी के साथ काम करेगा। नए धारा 8 के आवेदन, नवीनीकरण और फंडिंग में देरी या रोक लग सकती है। अगर बंद 30 साल से अधिक समय तक चलता है, तो PBR और HAP समझौतों जैसे समाप्त होने वाले अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप शेल्टर में हैं और आपको सेक्शन वाउचर मिल रहा है, या आपको वेटिंग लिस्ट से हटा दिया गया है, या आपका ट्रांसफर हो गया है, तो सेक्शन 8 के नजरिए से आपको जो भी करना है वो रुक जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। तो ये पागलपन है। वो लोगों को 2 साल बाद सेक्शन 8 से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो काम कर रहे हों और फिर भी किराया नहीं दे सकते। ट्रंप के बजट में राज्यों को ये तय करना है कि किसे घर की मदद मिलेगी, और ज्यादातर राज्यों को गरीब लोगों की परवाह नहीं है। सच कहूँ तो ज्यादातर राज्यों को गरीब लोगों की परवाह नहीं है। ये वाकई बहुत ही हास्यास्पद है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे गंभीरता से लेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ अपना हिस्सा चुकाएं, गड़बड़ न करें। सेक्शन 8 एक वरदान है। आप जानते हैं अगर कांग्रेस 30 सितंबर तक कुछ नहीं करती है तो HUD बंद हो जाएगा। कोई नवीनीकरण नहीं, कोई वाउचर नहीं। गंभीर,
मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि सेक्शन 8 में शामिल महिलाएं इस पतझड़ में डेटिंग करना चाहेंगी, और मैं आपको समझाता हूं क्यों। धारा 8 में 43% की कटौती की जा रही है, इसमें से अरबों की कटौती की जा रही है, और HUD द्वारा इसका प्रबंधन करने के बजाय वे सीधे आपके राज्य को अनुदान भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप टेक्सास या फ्लोरिडा जैसे बहुत लाल राज्य में रहते हैं तो संभावना है कि वे आपको आपका वाउचर वापस नहीं देंगे। वे उन लोगों को नए वाउचर नहीं देंगे जो उन्हें चाहते हैं। संभावना है कि वे उस पैसे का उपयोग अन्य स्थानों और अन्य क्षेत्रों में करेंगे। ठीक है, यहाँ एक और बात है। अगर आपको वाउचर मिलता है तो आपके पास 2 साल होते हैं। आप अधिकतम 2 साल तक उस पर रह सकते हैं। अभी औसतन लोग धारा 8 में 6 साल तक रह रहे हैं, तो आप अधिकतम 2 साल तक उस पर रह सकते हैं, और आपको काम करना होगा। आपको काम करना होगा क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ कामकाजी लोग हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको चोट नहीं लगी है, आप घायल नहीं हैं, आपको सेना में चोट नहीं लगी, आप विकलांग नहीं हैं, आप विकलांग व्यक्ति नहीं हैं, आप बस एक ऐसी महिला हैं जो कई बार गर्भवती हुई हैं और आपके कई बच्चे हैं, और इसी तरह आपको सेक्शन 8 और लाभ मिल रहे हैं। ओह, अब आपके लिए खेल का समय है, खेल का समय है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी महिलाएं स्वतंत्रता और डेटिंग पर अपनी स्थिति बदलने के लिए तैयार हो रही हैं। क्या आपने सेक्शन 8 और बड़े सुंदर बिल के बारे में सुना है? मेरा नाम टिया है और मैं यहाँ आपकी पसंदीदा बंधक ऋण अधिकारी हूँ, जिसे 50 राज्यों में लाइसेंस प्राप्त है। और आइए देखते हैं कि सेक्शन 8 से संबंधित बड़ा सुंदर बिल क्या है। बड़े सुंदर बिल में कर और खर्च संबंधी नीतियां शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 जुलाई 2025 को कानून में हस्ताक्षरित किया था। अब इस बड़े सुंदर बिल से संबंधित सेक्शन 8 के बारे में बात करते हैं। बिल से संबंधित सेक्शन 8 के लिए एक प्रमुख मानदंड यह है कि आपके पास कार्यक्रम में रहने के लिए केवल 2 साल हैं। अब इस बिल में विकलांग और बुजुर्ग शामिल नहीं हैं। इसलिए अगर आप वाकई सेक्शन 8 में हैं, तो अब आपको अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। इसलिए अगर आप अपने वाउचर को घर के मालिकाना हक में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, नीचे कमेंट करें घर के मालिक, और मैं आपको आपके नए घर की चाबियां दिलाने में मदद करूंगा। ठीक है, तो मैं 2026 के नए सेक्शन 8 कानून के बारे में बात करना चाहता हूं, जो लागू होने वाला है। आप समझ रहे हैं ना, हमें इस पर बात करनी होगी। अब बहुत से लोग हैं जो इससे दूर हो गए हैं, आप जानते हैं, या जो भी मामला हो सकता है, क्योंकि कानून बदल रहे हैं और सेक्शन 8 के नियमों में बदलाव हो रहा है। आप जानते हैं मूल रूप से आवश्यकताएं और उस पर रहने की सीमा, और आम तौर पर मेरा मतलब असभ्य होना नहीं है, और मुझे खेद है अगर यह कहने पर लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मुझे नया बदलाव पसंद आया। मुझे यह नया बदलाव पसंद है क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि वे लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, और फिर ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है और वे इसे पा नहीं पा रहे हैं। वे लाइन में भी नहीं लग पा रहे हैं। जब लाइन खुलती भी है तो आपको कॉल बैक तक नहीं मिलता है, आपको कई पीढ़ियों तक कोई चिट्ठी नहीं मिलती है, आपके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, और फिर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यह समस्या लंबे समय से है, और वे बूढ़े हो जाते हैं और वे इसे अपने बच्चों में भी डाल देते हैं, फिर उनके बच्चे इसे अपने बच्चों में डाल देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? और फिर वे इस समस्या से जूझने में सहज हो जाते हैं, और फिर वे बैठकर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्हें यह सहायता नहीं मिल पाती है, जैसे कि वे यहाँ के किसी आवारा हों। मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, और मुझे लगता है कि हर किसी को जीवन में ब्रेक लेने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो ब्रेक कितना भी हो, ताकि वो अपनी जिंदगी को संवार सके। और मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर और इस तरह की मदद मिलने पर आप अपनी जिंदगी को संवार पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं किस तरह का ग्राइंडर और हसला हूं। आप मुझे बहुत कम किराया देते हैं या कुछ ठीक ठाक, और आप मुझसे कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी संवारने के लिए 2 साल मिले हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा करूँगा। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने इसका फायदा उठाया है। आपको सेक्शन 8 मिला है, आपको काउंटी मिला है, आपको शायद किसी तरह का SSI मिल रहा है, मुझे नहीं पता, आपके बच्चों के लिए कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता। और उसके बाद आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं और यह बिल्कुल वैसा ही है, धिक्कार है। जैसे आपको क्या लगता है कि आप कैसा महसूस करेंगे, लोग क्या सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ एक दिन हो जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। इससे पता चलता है कि बहुत से लोगों ने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा होगा, समझ रहे हैं। इसलिए वे अभी परेशान हैं, वे सोचते हैं अरे मैं क्या करूंगा। उदाहरण चेन, तुम वही करने जा रहे हो जो हम करते आ रहे हैं और तुम यहाँ से बाहर निकलोगे और किराया भरोगे जैसे हमने चुकाया था, और तुम किसी और को जिंदगी में एक ब्रेक लेने का मौका देने जा रहे हो और अपने बच्चों को खाना खिलाने और खुद का पेट भरने और वो सब करने का मौका देने जा रहे हो जो तुम करते आ रहे हो। तुम सब आराम से बैठकर स्टेक और क्रैब लेग्स और झींगा और हर तरह की बकवास खा रहे हो, हर रात घर का बना खाना, नीचे से ऊपर तक माँ बाप की रसोई भरी हुई है। यार तुम्हारे पास किराने का सामान खत्म नहीं होता, और फिर यहाँ ऐसे लोग हैं, ये वाकई बहुत घटिया है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर अपने लिए कुछ भी बेहतर नहीं करना चाहते, वे अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वे कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, वे बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते, वे और ज्यादा पाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें इसकी आदत हो चुकी होती है। और इसका कारण दुखद है क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे और ज्यादा पाने या बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो उनका किराया बढ़ जाएगा, या तो ऐसा होगा या फिर वे सेक्शन 8 के लिए योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए वे जो करते हैं वह ये कि वे अपने जीवन को सीमित कर लेते हैं, वे खुद को बेकार होने देते हैं, वे खुद को बाहर जाकर वह नहीं करने देते जो उन्हें करना है, और फिर वे बैठकर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो ऐसा करते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इससे सहमत हूँ और मैं बस यही कहूँगा कि मैं लाइन में बहुत तेजी से दौड़ता हुआ जाऊंगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जैसे ही लाइन खुलेगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जैसे ही 2026 आएगा वह समय सीमा के बारे में बात करेगा और वह छोड़ देगा। अरे हाँ, मैं आवेदन कर रहा हूँ, मत खेलो, मैं आवेदन कर रहा हूँ। हाँ, और तुम सब भी आवेदन करो, जिन लोगों को मौका नहीं मिला है तुम सब भी आवेदन करो। क्या बकवास है। तो जाहिर तौर पर ट्रंप एक बिल प्रस्तावित कर रहे हैं जो सेक्शन 8 फंडिंग में कटौती करेगा, यह देखने के लिए कि यह आदमी कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको सेक्शन 8 का इस्तेमाल करने वाला कोई व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है कि जब पैसे में कटौती की जरूरत होती है तो वे कम आय वाले परिवारों से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अमीर दोस्तों से अपना टैक्स नहीं भरवाते हैं। अगर अमीर लोग अपना टैक्स भरते, पैसे में कटौती की जरूरत नहीं होगी। और लोगों को लगता है कि ओह, घेटों के लोग ही वो लोग हैं जिनके पास सेक्शन 8 है। नहीं, ये कम आय वाले परिवारों, विकलांग लोगों, दिग्गजों, उन लोगों के लिए बना है जिन्हें बस अपने किराए का भुगतान करने में मदद की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि वे उन समूहों पर हमला करना पसंद करते हैं जो सबसे कमजोर हैं, बजाय इसके कि वे उन समूहों से ज्यादा पैसे लें जो ज्यादा स्थिर हैं। यह मेरे लिए पागलपन है। और किसी बिंदु पर आपको यह सोचना होगा कि ये लोग वास्तव में दुष्ट हैं। आप उन लोगों के लिए फंडिंग काट रहे हैं जो पहले से ही अपने घर का खर्च नहीं उठा सकते। आप कितने दुष्ट लग रहे हैं। सेक्शन 8 ने कई लोगों के लिए छत और घर का रास्ता बनाया है, इसलिए इसे कटौती का प्राथमिक लक्ष्य बनाना मेरे लिए अजीब है। अगर आप चाहें तो इसे शैतानी कह सकते हैं। हे दोस्तों, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? तो मैं बस यहाँ बैठा हूँ और ओह के बारे में सोच रहा हूँ जबकि मैं यह फुटबॉल खेल देख रहा हूँ। आप जानते हैं मैं फुटबॉल की शौकीन हूँ, लेकिन मैं बस यही सोच रही थी कि मैंने कुछ ऐसा देखा था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप रोक लगाने जा रहे थे, या यह कोई कार्यकारी आदेश नहीं है, लेकिन धारा 8 के तहत लोग केवल 2 साल के लिए धारा 8 में रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह पारित नहीं हुआ है या ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस यह जानना चाहती थी कि आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं। मुझे माफ करें, मैं फुटबॉल का खेल देख रही हूँ, आपके इस पर क्या विचार हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी शादी को काफी समय हो गया है, लेकिन मैं 10 साल तक सरकारी सहायता पर रही, नहीं इसे वापस लेती हूँ, 10 महीने, और फिर मैं सेना में चली गई और फिर मैं 2 महीने के लिए इस पर रही, तो मैं कभी भी कुल मिलाकर 1 साल से ज्यादा समय तक सरकारी सहायता पर नहीं रही। तो एक तरह से मैं इस बात से सहमत हूँ कि सरकारी सहायता केवल अस्थाई होनी चाहिए। ओह, क्योंकि जब लोग लंबे समय तक सरकारी सहायता पर रहते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों में आलसी होने और काम न करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन मैं आलसी होने के बारे में बात करने वाला कौन होता हूँ क्योंकि मैं काम नहीं करता। लेकिन मैंने लंबे समय तक काम किया, मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वैसे भी मैं बस जानना चाहता था कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि लोगों को केवल 2 साल के लिए धारा 8 मिलनी चाहिए? मेरा मतलब है, यह एक अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके पास बहुत सी एकल माएं हैं जो किराया नहीं दे सकती हैं, और इससे लोग ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां ओह, ये एकल माएं नहीं होंगी, उनके पास अपने बच्चों के लिए सिर पर छत नहीं होगी। मुझे बस आश्चर्य है कि आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है,
तो ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि आपको हाउसिंग में धारा 8 के तहत केवल 2 साल दिए जाएंगे। अरे यार, ये सच है, और यह आखिरकार सच हो गया है कि अब आपको हाउसिंग में केवल 2 साल मिलेंगे। तो हर उस व्यक्ति के लिए जो अभाव में रहा है, जो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाया है, जो काम नहीं कर पाया है, जो राज्यपाल से अपने लिए धन की उम्मीद लगाए बैठा है, अब सब खत्म। बेहतर होगा कि तुम 2, 3 या 4 नौकरियां कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम्हारे पास इतनी सारी औरतें हैं जो इतने सालों से बैठी हुई हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, और यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है। तुम्हें बस 2 साल चाहिए। जाओ फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करो, जाओ अपना करियर शुरू करो। जब तक तुम्हें सेक्शन 8 से बाहर निकलने का समय आएगा, तब तक तुम अपना करियर बना सकते हो। अपनी जिंदगी में कुछ अलग करो। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लोगों को सालों तक उस बकवास पर बैठे रहने की जरूरत नहीं है जिसका इस्तेमाल वो जिंदगी जीने के लिए बैसाखी के तौर पर करते हैं, जो यहाँ हर कोई चाहता है। मुझे कमेंट में बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। नीचे दिए गए निजी डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक विवरण को देखें। यह $10 प्रति महीना है, लेकिन पेट्रियन के जरिए 7 दिन का मुफ्त ट्रायल मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार है। यह बहुत ही आसान है। आप जुड़ते हैं, डिस्कॉर्ड को लिंक करते हैं और आप इसमें शामिल हो जाते हैं। मेरा मतलब है, पिछले हफ्ते हमारे एक ट्रेडर ने 7 में से 6 जीते, यह अविश्वसनीय है, और एक ट्रेड में 80% का लाभ हुआ। हमारे यहाँ कई और ट्रेडर हैं जो बिल्कुल टैलेंटेड हैं। हमारे पास कांग्रेस ट्रैकर भी हैं। देखें कि राजनेता क्या खरीद रहे हैं, जैसे कि पेलोसी ट्रैकर। हमारे पास शेयर बाजार की खबरें, क्रिप्टो डेटा और बहुत कुछ है। चर्चाएं, साप्ताहिक सारांश। हमने हाल ही में सर्वर शुरू किया है। आपको $1,000 से ज्यादा मूल्य के ट्रेड और बॉट और इनमें से बहुत सारे सिग्नल सिर्फ $10 प्रति महीने में मिल रहे हैं, तो हमें जरूर देखें। यह एक अपेक्षाकृत नया सर्वर है जिसे हमने अभी शुरू किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आएगा। और जाहिर है, हम आप लोगों के लिए यह मुफ्त ट्रायल रखने जा रहे हैं। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो बेझिझक छोड़ दें, हमें देखें और हमारे साथ कुछ पैसे कमाएं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से स्टॉक में पैसे बनाने के लिए इस सर्वर का उपयोग कर रहा हूं।